नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंडमान और निकोबार के द्वीपों का नाम देश के नायकों के नाम पर रखना यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को आने वाली पीढ़ियां याद रखें। सोशल मीडिया पोस्ट पर आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो देश अपनी जड़ों से जुड़ते हैं वे विकास और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। दोनों ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों की बहाली और 4 वर्षों से अधिक समय से रुके पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को कम करना शामिल है। 5 साल के अंतराल के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए श्री डोभाल विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 23वें दौर में भाग लेने के लिए कल बीजिंग पहुंचे। कल चीन ने वार्ता के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा था कि वे आपसी समझ के आधार पर प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निजी लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण का सहारा लेने वाले जनता, खासकर सरकारी कर्मचारियों को आगाह किया है। आज पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बंदरदेवा में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 49वें बैच के पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा है कि राज्य प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेस की नौकरियों को नियमित करने का फैसला लिया है और आश्चर्य की बात यह है कि ये जानने के बावजूद कुछ लोग नियमित होने के लिए पैसों का भुगतान करने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि ऐसे भ्रष्ट अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बैठक में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक सिविल पुलिस APBN, IRBN सहित MT और टेलीकॉम विंग के विशेष ग्रेड देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। उन्होंने नए भर्ती हुए पुलिस से कहा है कि वे आधिकारिक तौर पर विभाग में शामिल होने और राज्य भर में तैनात होने के बाद किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। 49वें बैच में 738 सिविल पुलिस शामिल हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि त्रुटिमुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय विचार विमर्श कर रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG ऑनलाइन मोड में ली जाए या ऑफलाइन में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के साथ इस चुनौती से निपटने में सबसे आगे है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के 2023-2025 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के एक समूह के लिए एप्रिशिएशन कोर्स इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस एंड प्रोसीजर नामक उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से कल ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में जागरूकता के लिए एक रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सेबी के कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव ने निवेशकों की सुरक्षा तथा सिक्योरिटीज मार्केट में विश्वास को बढ़ावा देने के सेबी की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य सिक्योरिटीज मार्केट, वित्तीय नियोजन तथा निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने गत मंगलवार आनिनी में चिंतन शिविर पर एक बैठक की। इस बैठक में DDSE आनिनी तेंजिन वांगदा ने जिले में वर्तमान शिक्षा परिदृश्य पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और अरुणाचल प्रदेश सर्विसेज पेंशनर एसोसिएशन की जिला इकाई ईस्ट सियांग ने गत मंगलवार को मबो में पेंशनर्स डे ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।